ग मंत्र प्रकरण प्रसंग। अब मंत्र का विवेचन किया जा रहा है। मंत्र विचार प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्रा तेषां च तादृशार्थ स्मारकत्वे नैवार्थ वत्वम् न तु तदुच्चारणं दृष्टार्थं संभवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफल कल्पनाया अन्यायत्वात् न च दृष्टस्यार्थ स्मरणस्य प्रकारांतरेणापि संभवान् मन्त्राणां व्यर्थमिति वाच्यं मन्त्रैरेव स्मर्तव्यमिति नियम विद्याशयणात्। अर्थ मंत्र अनुष्ठान में संवेत द्रव्य देवता क्रिया आदि पदार्थों का स्मरण कराते हैं। इस प्रकार से पदार्थों का स्मरण कराने में ही मंत्रों की सार्थकता है। मंत्रोच्चारण का अदृष्ट फल सर्वत्र नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दृष्ट फल संभव हो तो अदृष्ट फल की कल्पना उचित नहीं। और यह कहना है कि अर्थ स्मरण रूप दृष्ट प्रयोजन की सिद्धि तो अन्य प्रमाणों से भी हो सकती है, फिर मंत्रोच्चारण व्यर्थ ही है भी उचित नहीं है। कारण मंत्रैरेव स्मर्तव्यम् यह नियम विधि आश्रयनीय है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी यह सर्वकर्ता सकलात्म रूप चंद्राकर वहनि क्षण कश्चिदात्मा सांबो ही सोमार्ध विभूषणार्ढ्यस्तम् नौमि देवार्चित पादपीठम् इदानीं मंत्र रूपं वेदभागं निरूपयति प्रयोगेति तेसामिति मंत्राणामित्यर्थ तादृशा थेति प्रयोग समवेतार्थत्यर्थ अर्थवत्त्वमिति प्रयोजनवत्त्वमित्यर्थ ननु मंत्रोच्चारणस्यादृष्टार्थकत्वेनाप्युपपत्तेः कुतस्तेषां प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वेनैव प्रयोजनवत्व मित्यत आहनात्विति तदुच्चारण मित्री मंत्रोच्चारण मित्यर्थ तत्र हेतुमाह दृष्ट फलकत्व इति ननु दृष्टस्य देवता व्यर्थ स्मरणस्य ब्राह्मण वाक्या दिनापि संभवान मंत्रोच्चारण स्यादृष्टार्थकत्वानंगीकारे तदाम्नानस्य वैयर्थापत्तिरित्याशंकय मंत्रैरेवसो अर्थ स्मर्तव्य इति नियम विध्यंगिकारान्न मंत्रामनानस्य वैयर्थमिति परिहरति न चेत्यादिना। अर्थ बोधिनी यागानुष्ठान अनेक पदार्थों द्वारा संपन्न होता है। ये पदार्थ द्रव्य देवता क्रिया आदि रूप से अनेक प्रकार के होते हैं। याग के अनुष्ठान काल में मंत्रों का भी पाठ किया जाता है। प्रश्न है कि मंत्रों का पाठ क्यों किया जाता है। सिद्धांत पक्ष का मत है कि मंत्रों के पाठ से उन पदार्थों का स्मरण किया जाता है जिनका प्रयोग अनुष्ठान काल में किया जाता है, अर्थात मंत्र अनुष्ठान में समवेत पदार्थों के स्मारक होते हैं। मंत्रों की सार्थकता प्रयोग समवेत अर्थों के स्मरण कराने में ही है। पूर्व पक्षी मंत्रोच्चारण को अदृष्टार्थक मानने का आग्रह कर सकता है। वह कह सकता है कि अनुष्ठान काल में विहित मंत्रों के यथास्थान पाठ से अदृष्ट उत्पन्न होता है। मंत्र पाठ का कुछ भी दृष्ट प्रयोजन नहीं। मंत्र प्रयोग संपेत अर्थ के स्मारक नहीं माने जाने चाहिए। सिद्धांती पूर्व पक्षी के उक्त कथन का खंडन करता है। यदि दृष्ट फल की संभावना हो तो अदृष्ट फल की कल्पना कहीं भी करनी उचित नहीं है, जबकि मंत्रोच्चारण का स्मरणात्मक दृष्ट प्रयोजन माना जा सकता है। तब उसे मंत्रोच्चारण का फल न मानकर उसका फल अदृष्ट अर्थात पुण्योत्पत्ति नहीं माना जा सकता। यदि पूर्व पक्षी कहे कि प्रयोग संवेद अर्थों का स्मरण किसी दूसरे उपाय जैसे ब्राह्मण वाक्यों के द्वारा भी किया जा सकता है, फिर क्यों न मंत्रोच्चारण को अदृष्ट अर्थक मान लिया जाए, तो इस आक्षेप का खंडन करते हुए सिद्धांती कह सकता है कि उक्त युक्ति के आधार पर प्रयोग संवेद अर्थों के स्मरण कराने के संबंध में मंत्रैरेव स्मर्तव्यम् इस प्रकार नियम विधि आश्रयणीय है। अतः प्रयोग संवेद अर्थों का स्मरण अनिवार्यतः मंत्र द्वारा ही किया जाना चाहिए। मंत्रैरेव स्मर्तव्यम् इस नियम का आश्रय लेने पर इसे प्रमाण मानने पर मंत्रों के उच्चारण को अदृष्टार्थक नहीं मान सकते। यदि मंत्रों द्वारा प्रयोग संवेद अर्थों का स्मरण नहीं किया जाएगा तो उक्त नियम विधि का उल्लंघन हो जाएगा एवं तदनुसार वहाँ यागजन्य अपूर्व निष्पन्न नहीं हो सकेगा। नियमापूर्व की उत्पत्ति नहीं होने से यागानुष्ठान खंडित समझा जाएगा और अनुष्ठाता को यागजन्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसी बात को सार विवेचनीकार ने संक्षेप में इस प्रकार कहा है, एवं च नियम विधि बलात् नियमादृष्टम किंचिदुत्पद्यत इत्यंगी क्रियते। नियम विधि विचार नाना साधन साध्य क्रिया मेक साधन प्राप्ता व प्राप्तस्या परसाधनस्य प्रापको विधिर नियम विधि इत्याहु। विधि रत्यंतम प्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते इति। अस्यार्थः प्रमाणांतरेणा प्राप्तस्य प्रापको विधिरपूर्व विधि यथा यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि। स्वर्गार्थ यागस्य प्रमाणांतरेणा प्राप्तस्यानेन विधानात् पक्षे प्राप्तस्य प्रापको विधिर्नियम विधि यथा ब्रीहीन अवहन्ति इत्यादि। कथमस्य पक्षे प्राप्त प्रापकत्वमिति चेत् इत्थम् अनेन वघ ह्यवघातस्य वैतुस्यार्थत्वम् न प्रतिपाद्यते अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात् किन्तु नियमः स चाप्राप्तांश पूर्णम् वैतुष्यस्य हि नानु पायसाध्यत्वाद् यदा अवघातं परित्यज्य उपायांतरं ग्रहीतुमारभते तदा अवघातस्य प्राप्तत्वेन तद्विधानात्मक प्राप्तांश पूरणमेवानेन विधिना क्रियते। अतश्च नियम विधाव प्राप्तांश पूरणात्मको नियम एव वाक्यार्थ पक्षे अप्राप्तवघातस्य विधानमिति यावत्। अर्थ विधि विविध साधनों से सिद्ध होने वाली क्रिया के अनुष्ठान में अनभिप्रेत साधन होने लगने पर अनभिप्रेत साधन की प्राप्ति कराने वाली विधि को नियम विधि कहा जाता है। कुमारिल भट्ट ने तंत्रवार्तिक के अंतर्गत विधि रत्यंतम प्राप्तो इस श्लोक में नियम विधि एवं अन्य दो विधियों का लक्षण किया है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, अत्यंत अप्राप्त पदार्थ का विधान करने वाली विधि को अपूर्व विधि, पदार्थ की पाक्षिक अप्राप्ति होने पर तद्विधायक वाक्य को नियम विधि और एक अर्थ तथा इतर अर्थ दोनों की प्राप्ति होने पर निवृत्ति का बोध कराने वाली विधि को परिसंख्या विधि कहा जाता है। उक्त श्लोक का स्पष्ट अर्थ इस प्रकार है, अन्य प्रमाणों से जिस पदार्थ का विधान नहीं हुआ रहता है उस पदार्थ का विधान करने वाली विधि को अपूर्व विधि कहते हैं। जैसे यजेत स्वर्ग कामः, यह अपूर्व विधि है कारण जिस याग का विधान अन्य किसी प्रमाण से नहीं होता है ऐसे स्वर्ग फलक याग का विधान यह विधि करती है। पक्ष में अप्राप्त पदार्थ की प्रापक विधि को नियम विधि कहते हैं, यथा ब्रीहीन अवहंती धान कूटे जाए, यह नियम विधि है। यह विधि अवघात का विधान इसलिए नहीं करती है कि धान की भूसी दूर हो जाए, क्योंकि अवघात से भूसी दूर होती है और अवघात के अभाव में नहीं दूर होती। इस प्रकार लोक सिद्ध अन्वय एवं व्यतिरेक से ही इस विषय का ज्ञान हो जाता है। यह विधि नियम का प्रतिपादन करती है और प्राप्त अंश की प्राप्ति को ही नियम कहा जाता है। तूष विमोक अनेक उपायों से सिद्ध हो सकता है, अतएव जब अवघात को छोड़कर अन्य किसी उपाय को ग्रहण किया जाने लगता है तब ऐसी स्थिति में यह विधि अप्राप्त अवघात का विधान करके अप्राप्त अंश की पूर्ति कराती है। सारांश यह है कि नियम विधि के द्वारा अप्राप्त अंश की पूर्ति रूप नियम का ही बोध कराया जाता है। यहाँ पर पक्ष में अप्राप्त अवघात का प्रापण ही नियम है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी ननु किम लक्षण को नियम विधिर यदाश्रणादन्यस्यार्थस्मारकस्य व्यवच्छेदो लभ्यत इत्याशंकय नियम विधि लक्षणमाह नाना साधनेति तन्न सम्मतिमाह यथाहुरिति ताम व्याचष्टे अस्यार्थ इत्यादिना तत्रापि विधि रत्यंतं प्राप्ता विधि प्रथम पादं पूर्व विधि परं व्याचष्टे प्रमाणा रंतरेणेति प्रमाणांतरेण तदर्थत्वेन प्राप्तस्य तदर्थत्वेन प्राप्को यो विधि सो अपूर्व विधिरित्यर्थ तत्रोदाहरण माह यथेति तस्या पूर्व विधित्वे हेतु माह स्वर्गेति स्वर्गार्थकत्वेन प्रमाणांतरेण प्राप्तस्य यागस्य तदर्थत्वेन यजेत स्वर्गकाम इत्यनेन विधानात् भवत्य यम पूर्व विधिरित्यर्थः। नियमः पाक्षिके सतीति द्वितीय पादं प्रकृते सम्मति रूपं व्याचष्टे पक्षे अप्राप्तस्येति तत्रोदाहरणमाह यथेति ननु व्रीहीन अवहन्तीत्यस्यावघात विधेय कथं पक्षे प्राप्तस्यावघातस्य प्रापकत्वं स्वीक्रियते वैतुष्यार्थत्वेन प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्य तस्य तदर्थत्वेनानेन विधानोपपत्ते इत्याशंकयानेन हि विधिनावघातस्य वितूषतार्थत्वं न प्रतिपाद्यते तस्य तदर्थत्वेना इति सर्वजनीनमिति परिहरति कथमित्यादिना इत्थमिति अनेन वक्षमाणप्रकारेणेत्यर्थः। ननु यद्यवघातादिनां सर्वेषामेव वैतुष्यार्थत्व अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धं तथा ब्रीहीन अवहन्ति व्यवघात विधेरन्वय व्यतिरेक सिद्धावघात प्रापकत्वेन वैयर्थमेवाप द्येत अनुवादकत्वादित्या शंकते किन्त्विति नास्य विधेर अनुवादकत्वेन वैयर्थं संभवति नियम विधायकत्वेन अनुपपत्ते रीति परिहरति नियम इति ब्रीहीणां वैतुष्यम् अवघातेनैव सम्पादनीयमिति नियमः प्रतिपाद्यत इत्यर्थः। ननु तादृश नियम प्रतिपादने अत्र कीदृशो वाक्यार्थो भवतीत्याह स चेति स एवा प्राप्तांश पूरण रूपो नियमो अत्र वाक्यार्थ इत्यर्थः। ननु कथमत्रा प्राप्तांशो लभ्यते यस्य पूरणेनास्य विधे सार्थक्य मित्यतो अत्रा प्राप्तांश पूर्ण रूपमेव वाक्यार्थम् उपपादयति वैतुष्येत्यादिना उपपादितं प्राप्तांश पूर्ण रूपं वाक्यार्थम् उपसंहरति अतश्येति अस्य विधेर प्राप्तांश पूर्ण रूपनियम प्रतिपादकत्वा चेत्यर्थ पर्यवसितार्थमाह पक्ष इति यावदिति पर्यवसन्नमित्यर्थ। अर्थबोधनी विभाग संख्या 61 में मंत्रैरेव स्मर्तव्यम् इस नियम विधि के आश्रय का उल्लेख किया गया है। अतएव नियम विधि का स्वरूप क्या है, इस प्रकार नियम विधि के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा होती है। प्रकृति विभाग में नियम विधि के स्वरूप पर विचार किया गया है। नियम विधि का लक्षण देकर लक्षण की पुष्टि के लिए तंत्रवार्तिक का एक श्लोक उद्धृत किया गया है। श्लोक विधि का एक नवीन विभाजन प्रस्तुत करता है। यहाँ विधि के तीन प्रभेद माने गए हैं, अपूर्व विधि, नियम विधि एवं परिसंख्या विधि। श्लोक के अभिप्राय को स्पष्ट करते समय ग्रंथकार ने लक्षण एवं उदाहरणों द्वारा तीनों विधियों के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। परिसंख्या विधि के स्वरूप का निरूपण अग्रिम विभागों में किया गया है। तंत्रवार्तिक में कुमारिल भट्ट ने उपर्युक्त तीनों विधियों का लक्षण इस प्रकार किया है। विधिरत्यन्तं प्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। यहाँ सर्वप्रथम विधि का लक्षण दिया गया है। यहाँ विधि शब्द अपूर्व विधि का वाचक है। कुमारिल के अनुसार अपूर्व विधि का लक्षण है विधिरत्यन्तं प्राप्तौ, अत्यन्तं अप्राप्तौ। विधि का अर्थ है विधेयार्थस्य केनापि प्रमाणेन अज्ञातत्वे सति तस्य विधायको वाक्यो विधि, अर्थात जिस पदार्थ का ज्ञान किसी भी प्रमाण से नहीं होता उस पदार्थ का विधान करने वाली विधि को अर्थात अपूर्व विधि कहते हैं। अत्यंतम प्राप्ति का अर्थ है किसी अन्य प्रमाण से बिल्कुल ज्ञान न होना, यजेत स्वर्ग कामः। इस विधि वाक्य से ज्ञात होता है कि यागानुष्ठान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु स्वर्ग साधन भूत याग का ज्ञान एतद् वाक्यातिरिक्त प्रत्यक्ष आदि किसी अन्य प्रमाण से नहीं होता है। इस प्रकार विधेय याग अत्यंतम प्राप्त है। अत्यंतम प्राप्त याग का विधान यजेत स्वर्ग कामः विधि करती है। अतएव यजेत स्वर्ग कामः वाक्य को अपूर्व विधि माना जाता है। कुमारिल के विधिर अत्यंतम प्राप्त इस अपूर्व विधि लक्षण की व्याख्या लौगाक्षी भास्कर ने इन शब्दों में किया है। प्रमाणांतरेणा प्राप्तस्य प्रापको विधिर अपूर्व विधि याग स्वर्ग प्राप्ति का साधन है, इसमें प्रमाण है। यजेत स्वर्ग कामः, यह वाक्य इस प्रकार यजेत स्वर्ग कामः प्रमाण है। यजेत स्वर्ग कामः वाक्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष अनुमान एवं शब्द आदि प्रमाणांतर है। अप्राप्त शब्द का अर्थ है अज्ञात एवं प्रापक शब्द का अर्थ है ज्ञापक। विधेयार्थ याग स्वर्गार्थक है जिसका विधान अन्य किसी प्रमाण से न होकर केवल यजेत स्वर्ग कामः वाक्य से होता है। अतएव यह वाक्य विधि या अपूर्व विधि होता है। विभाग संख्या 19 और 20 में जिसे उत्पत्ति विधि कहा गया है उसी को यहाँ विधि या अपूर्व विधि कहा गया है। कुमारिल की उक्त कारिका में नियमः पाक्ष के सती अंश नियम विधि का परिचय देता है। नियमः यह पद लक्ष्य है और पाक्ष के सती अंश लक्षण पाक्ष के सती का अर्थ है। विधेय की पाक्षिक अप्राप्ति होने पर अभिप्राय यह है कि विधेयार्थ की पाक्षिक अप्राप्ति होने पर अप्राप्त विधेयांश की प्रापक विधि नियम विधि कहलाती है। विधि रत्यंतम प्राप्तों के अप्राप्ति के साथ पाक्षिक के इसके अर्थ का अन्वय विवक्षित है। तब पाक्षिक के सती का अर्थ विधेयार्थ से पक्षे अप्राप्तो सत्याम हुआ। इसके अनुसार पक्ष में अप्राप्त अर्थ के प्रापक विधि वाक्य को नियम विधि कहा जाता है। इसलिए लोकाक्षी भास्कर ने पक्ष के सती का व्याख्यान इस प्रकार किया है पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधिर नियम विधि। इस व्याख्या का विस्तार उदाहरण सहित किया गया है जिससे लोकाक्षी भास्कर के नियम विधि लक्षण नाना साधन साध्य क्रिया या मेक साधन प्राप्ताव प्राप्तस्य पर साधनस्य प्रापकोर विधिर नियम विधि का भी स्पष्टीकरण हो जाता है। बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका संपादन अनेक साधनों द्वारा संभव होता है। इस प्रकार की क्रिया को नाना साधन साध्य कहा जा सकता है। कभी कभी प्रासंगिक क्रिया के संपादन हेतु अनभिप्रेत साधन की प्राप्ति होती या होने लगती है। अभिप्रेत की नहीं ऐसी स्थिति में अभिप्रेत अप्राप्त साधन की प्राप्ति जिस वाक्य के द्वारा कराई जाती है उसे नियम विधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए व्रीही तूष विमोक एक क्रिया है जिसका अनुष्ठान नख विदलन से हो सकता है, अश्म कुट्टन से हो सकता है, अवहनन मूसल से कुटना हो सकता है। इस प्रकार अन्य साधनों से भी तूष विमोचन हो सकता है। इस प्रकार तूष विमोक के अनेक साधनों द्वारा संपाद्य होने पर भी जब तूष विमोक में नख विदलन आदि किसी भी साधन की प्राप्ति होने लगती है तब अवघात की अप्राप्ति हो उठती है। अतः उस अप्राप्त अभिघात को प्राप्त कराने के लिए नियम विधि की प्रवृत्ति होती है। नियम विधि यहाँ पर अप्राप्त अवघात का विधान करती है। ध्यान रहे प्रकृत स्थल में अनभिप्रेत एक साधन की प्राप्ति हो रही थी जिसे बाध कर अभिप्रेत अप्राप्त साधन अवघात का विधान किया गया है। अवघात द्वारा ही वैतुष्य होने पर अपूर्व की उत्पत्ति मानी जाती है, नख विदलन द्वारा होने पर नहीं, इसलिए अवघात का नियमन किया जाता है। आशय यह है कि अवघात का प्रयोजन नियमापूर्व की उत्पत्ति है, तूष विमोक मात्र नहीं, अवघात होने पर तूष विमोक होता है एवं अवघात के अभाव में तूष विमोक नहीं होता। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक द्वारा तूष विमोक की सिद्धि लोकतः प्राप्त है, सर्व विदित है। अतएव अवघात का विधान तूष विमोक के लिए नहीं, अभितु जब उपायांतर का ग्रहण होने लगता है और इस प्रकार अवघात के वैकल्पिक पक्ष में प्राप्ति नहीं होती देखी जाती है तब अवघात का विधान गृहीन अवहन से इस नियम विधि द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अप्राप्त अवघात का विधान करके अप्राप्त अंश की पूर्ति की गई। इसी अप्राप्तांश पूरण को नियम कहा जाता है, किंतु नियमः स च प्राप्तांश पूरणम् नियम विधि स्थल में अप्राप्ति की प्राप्ति कराई जाती है। यदि विधेय की प्राप्ति हो ही रही हो तो यहाँ नियम विधि की प्रवृत्ति नहीं होगी। यदि अवघात प्राप्त ही हो रहा हो तो एक तो अवघात का विधान ही नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी प्राप्ति हो ही रही है और प्राप्त का विधान करने पर पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे स्थल पर नियम विधि की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए नियम विधि स्थल में एक अनभिप्रेत साधन की प्राप्ति होने लगती है, दो अभिप्रेत साधन की अप्राप्ति हो उठती है और तीन अप्राप्त अंश का विधान किया जाता है। नियम विधि स्थल में तीनों विशेषताएं समुदित रूप में रहती हैं। प्रसंग, अब परिसंख्या विधि का निरूपण किया जा रहा है। परिसंख्या विधि लक्षणम्। उभयोश्य युगपत प्राप्त वितर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि यथा पंच पंच नखा भक्ष्या इति इदं हि वाक्यं न पंच नख भक्षण परम तस्य रागतः प्राप्तत्वात् नासि नियम परम पंच नखा पंच नख भक्षणस्य युगपत प्राप्तेह पक्षे अप्राप्त्य भावात् अत इदं पंच नख भक्षण निवृत्ति परमिति भवति परिसंख्या विधि। अर्थ, दोनों पदार्थों की एक ही काल में प्राप्ति होने पर दोनों में से एक पदार्थ की निवृत्ति का बोध कराने वाली विधि को परिसंख्या विधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए पंच पंच नखा भक्ष्या ऐसा ही एक विधि वाक्य है। इस वाक्य का अर्थ है पंजे वाले पांच जीव भक्ष्य हैं। यह वाक्य पांच पंच नख जीवों के भक्षण का विधान नहीं करता, क्योंकि पंच नख भक्षण पुरुष को स्वभावतः राग से ही प्राप्त है। उक्त विधि वाक्य अप्राप्तांश की पूर्ति रूप नियम का भी विधान नहीं करता, कारण यहाँ एक पक्ष में पंच नख भक्षण की अप्राप्ति नहीं होती है, जिसकी प्राप्ति कराने के कारण उक्त वाक्य को नियम विधि माना जाए। पक्ष में अप्राप्ति इसलिए नहीं है कि जीव चाहे पंच नख हो अथवा अपंच नख, सभी सर्वदा पुरुष को भक्ष्य रूप में स्वाभाविक राग से प्राप्त हैं, अतएव पंच पंच नखा भक्ष्या। यह वाक्य पंच पंच नख से अतिरिक्त जीवों के भक्षण की निवृत्ति का परक है, इसी को परिसंख्या विधि कहते हैं। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी। तत् चेत्यादुत्तरार्धं परिसंख्या विधि परं व्याचष्टे उभयोश्चेति तत्रोदाहरणमाह यथेति अस्यात्यन्तं प्राप्त विधित्वरूपं पूर्व विधित्वमाशंकय निराचष्टे इदं हिति तत्र हेतुमाह तस्येति पंच नख भक्षणस्येत्यर्थ अस्य वाक्यस्य नियम विधित्वमपि निराचष्टे नापिति तत्रापि हेतुमाह पंच नखेति अत इति विधि द्वया संभवादित्यर्थ इदमिति पंच पंच नखा भक्ष्या इति वाक्यमित्यर्थ अपंच नख भक्षण वृत्तिस्तु न केनापि प्राप्ता ततश्च तद्विधायकत्वेन नास्य वाक्यस्यानुवादकत्वमपि तथा च सही पात्र वाक्यार्थ इति भावः। अर्थबोधिनी, परि उपसर्ग का अर्थ वर्जन और संख्या शब्द का अर्थ बुद्धि होता है, अतएव परिसंख्या शब्द का अर्थ वर्जन बुद्धि हुआ। वर्जन बुद्धि को उत्पन्न करने वाली विधि को परिसंख्या विधि कहा जाता है। परिसंख्या विधि का सर्वाधिक प्रचलित उदाहरण पंच पंच नखा भक्ष्याह है। प्रकृत उदाहरण वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के एक श्लोक का अंश है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार है, पंच पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षत्रेण राघव शशक शल की गुधा खड़की कुमर्थो पंच मह। बाली रामचंद्र से कहते हैं, हे राम, खरगोश साही गोह गैंडा और कछुआ ये पांच पंच नख ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के द्वारा भक्ष्य हैं। जैसा कि अभी बताया जा चुका है, परिसंख्या का अर्थ वर्जन बुद्धि होता है, तभी तो पंच पंच नखा भक्ष्या इस परिसंख्या विधि भी वर्जन बुद्धि उत्पन्न करती है। उक्त विधि के द्वारा शशक आदि पंच पांच पंच नखों के भक्षण का विधान नहीं है, अपितु यह विधि उक्त पांच पंच नखों के अतिरिक्त जीवों के भक्षण से पुरुष को निवृत्त करती है। किंतु निवृत्त करने के कारण पंच पंच नखा भक्ष्या इस वाक्य को निषेध वाक्य नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निषेध स्थल में नय का अनिवार्यतः प्रयोग होता है, किंतु परिसंख्या स्थल में नय का प्रयोग नहीं होता है। परिसंख्या की विधि रूपेण प्रवृत्ति होती है, इसलिए परिसंख्या को विधि कहा जाता है, भले ही उसका अर्थ निवृत्ति में पर्यवसित होता हो। पंच पंच नखा भक्ष्या को अपूर्व विधि अर्थात उत्पत्ति विधि नहीं माना जा सकता, कारण अपूर्व विधि स्थल में विधेय अत्यंत अप्राप्त है, किंतु प्रकृत स्थल में पंच नख भक्षण रागतः प्राप्त है। आशय है कि क्षुधा की तृप्ति करने की इच्छा सभी पुरुषों के लिए स्वाभाविक है। जिस पदार्थ को प्राप्त करने की स्वभावतः इच्छा होती है उसे स्वभावतः प्राप्त या रागतः प्राप्त कहते हैं। क्षुधा का निवारण मांस भक्षण से भी होता है, अतएव क्षुधित व्यक्ति के लिए प्रत्येक जीव का भक्षण रागतः प्राप्त है। वे जीव चाहे पंचनख पांच नाखूनों वाले अर्थात पंजे वाले हो अथवा पंचनख जिनके पांच नाखून नहीं होते जैसे घोड़ा गाय आदि, पंचनख जीवों के अंतर्गत ही शशक आदि पंच पंच पंचनख जीव भी होते हैं। इस प्रकार पंच पंचनख भक्षण की प्राप्ति हो जाती है, फिर पंच पंचनख भक्षण को अत्यंत अप्राप्त कैसे माना जा सकता है, जिसका विधान मानकर पंच पंचनखा भक्षा को अपूर्व विधि माना जाए। इदं वाक्यं न पंचनख भक्षणम परम तस्य रागतः प्राप्तत्वात्। वाक्य द्वारा ग्रंथकार ने पंच पंचनखा भक्षा इस वाक्य को अपूर्व विधि मान लेने का खंडन किया है। पंच पंचनखा भक्षा इस वाक्य को नियम विधि भी नहीं माना जा सकता। जैसा कि अभी बताया जा चुका है कि पंचनख भक्षण और अपंचनख भक्षण इन दोनों की एक साथ प्राप्ति होने के कारण पक्ष में पंच पंचनख भक्षण की अप्राप्ति नहीं होती, फिर पंच पंचनखा भक्षा को नियम विधि कैसे मान लिया जाए। नियम विधि होने के लिए आवश्यक है कि वाक्य पक्ष में अप्राप्त पदार्थ का विधायक हो, जैसा कि नियम विधि का लक्षण है पक्षे अप्राप्त से प्राप्त को विधिर नियम विधि। इसलिए पंच पंचनखा भक्षा या विधि शशक आदि पांच पंचनखों के अतिरिक्त अन्य जीवों के भक्षण की निवृत्ति की बोधिका होती है। इस प्रकार निवृत्ति बोधक अर्थात वर्जन बुद्धि जनक होने के कारण ही प्राकृतिक वाक्यों को परिसंख्या विधि कहा जाता है। जिन जीवों के भक्षण की निवृत्ति अभिप्रेत है वे दो श्रेणियों में इस प्रकार विभक्त किए जा सकते हैं। अपंचनख जिन जीवों के पंचनख अर्थात पंजे नहीं होते, खरगोश साही गोह गैंडा और कछुआ, इन पांच पंचनखों के अतिरिक्त अन्य सभी पंचनख जीव प्रकृति स्थल में पंच पंचनख भक्षण एवं तदतिरिक्त अपंच पंचनख भक्षण इन दो की एक ही काल में प्राप्ति हो रही थी, जिनमें से एक पंच अपंच पंचनख भक्षण की व्यावृत्ति की गई है। अभिप्राय यह है कि परिसंख्या स्थल में नियम विधि की भांति पाक्षिक प्राप्ति नहीं होती, अपितु दोनों पदार्थों की युगपत एक काल में ही प्राप्ति होती है, इन दोनों में से एक की निवृत्ति की जाती है। इदम ही वाक्यम न पंचनख भक्षण परम के स्थान पर इदम ही वाक्यम न पंच पंचनख भक्षण परम होना चाहिए, क्योंकि पंच पंचनखा भक्ष्या इस परिसंख्या विधि में पंच पद का भी प्रयोग किया गया है। इस स्थल पर मीमांसा न्याय प्रकाश में इदम ही वाक्यम न भक्षण विधि परम यह पाठ प्राप्त होता है। इसी प्रकार इदम पंचनख भक्षण निवृत्ति परम पाठ भी अनेक पुस्तकों में प्राप्त होता है, किंतु इस पाठ को शुद्ध नहीं माना जाता, क्योंकि अपंच पंचनखों के भक्षण की निवृत्ति होती है, न कि केवल अपंचनखों के भक्षण की निवृत्ति होती है। अतएव यहाँ अपंच पंचनख भक्षण निवृत्ति परम पाठ समीचीन माना जाता है। चिन्ह स्वामी शास्त्री ने सूचित किया है कि मीमांसा न्याय प्रकाश में भी इसी स्थल पर अपंच नख भक्षण निवृत्ति परम पाठ अनेक पुस्तकों में प्राप्त हुआ है, किंतु व्याख्या के कष्ट साध्य होने के कारण इन्होंने इस पाठ को छोड़ दिया तथा अन्य पुस्तकों में पंचातिरिक्त पंच नख भक्षण निवृत्ति परम इस पाठ को ग्रहण किया है। प्रसंग अपरिसंख्या विधि के भेदों का निरूपण हो रहा है। परिसंख्या विधि भेद द्वयम् सा च द्विविधा श्रौति लाक्षणिकी चेति तत्र अत्र ही एव आवपन्ति इति श्रौति परिसंख्या एव कारेण पवमानातिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्तेर विधानात् पंच पंच नखा भक्ष्याः इति तु लाक्षणिकी इतर निवृत्ति वाचक पदाभावात् अत एव ऐषा त्रिदोषग्रस्ता। अर्थ परिसंख्या विधि के दो प्रभेद हैं, एक श्रौति एवं दो लाक्षणिकी। श्रौति परिसंख्या विधि का उदाहरण अत्र ही एव आवपन्ति यही पर आवाप शब्द प्रक्षेपण करते हैं। प्रकृति उदाहरण में श्रुति एवं शब्द से पवमान के अतिरिक्त अन्य स्तोत्रों कि निवृत्ति का बोध होता है, इसलिए इसे श्रौति परिसंख्या कहते हैं। लाक्षणिकी परिसंख्या विधि का उदाहरण पंच पंच नखा भक्ष्या है, क्योंकि यह निर्दिष्ट से अतिरिक्त की निवृत्ति का सूचक एवं जैसा कोई पद सुना नहीं जाता अपितु लक्षण द्वारा उसकी कल्पना करनी पड़ती है। अतएव यह लाक्षणिकी परिसंख्या तीन दोषों से युक्त है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी सा च परिसंख्या द्विविधित्याह सा चेति आद्या मुदाहरति तत्रेति द्वयोः परिसंख्योर मध्य इत्यर्थ अत्रेति प्रकृत इत्यर्थ अवयन्तीति अवजानन्तीत्यर्थ गायन्तीति यावत् श्रोत्या परिसंख्या यास्तत्वे हेतुमाह एव कारणेति द्वितीया मुदाहरति पञ्चेति पञ्च पञ्च नखास्तु पञ्च पञ्च नखा भक्ष्याः ब्रह्म क्षत्रेण राघव शशकः शल्लकी गोधा खड्गी कुर्मोथ पञ्चमः इत्यादि वचनोदाहृता बुद्ध्याः अस्या अपि तत्वे हेतुमाह इतर निवृत्तिति अत एवेति इतर निवृत्तिवाचक पदाभावादित्यर्थ एषेति लाक्षणिकित्यर्थः अर्थबोधिनी परिसंख्या के दो भेद होते हैं, श्रौति और लाक्षणिकी। परिसंख्या द्वारा प्राप्त दो पदार्थों में से विधिश्रुत से इतर की व्यावृत्ति की जाती है। पंच पंच नखा भक्ष्याः विधि में पंच पंच नख भक्षण श्रुत है, विधिश्रुत से इतर हुआ। अपंच पंच नख भक्षण इसी की व्यावृत्ति की जाती है। जिस परिसंख्या में इतर व्यावर्तक शब्द साक्षात श्रुत होता है उसे श्रौति परिसंख्या कहते हैं। यथा अत्र ये वाव पंक्ति इस वाक्य में एव शब्द इतर व्यावर्तक है, अतएव यह वाक्य श्रौति परिसंख्या माना जाता है। अत्र ये वाव पंक्ति वाक्य का अर्थ है यही पर आवाप होता है। यहाँ आवाप का अर्थ है सामो का प्रक्षेप, अतिरिक्त साम शब्दों का योग। पवमान क्रिया के प्रसंग में कहा गया है कि त्रीणी ह वई यज्ञ स्योदराणि गायत्री बृहत निष्टुप अत्र ये वाव पंक्ति अत एवोद्वपंक्ति। उद्वाप शब्द का अर्थ उद्धार अर्थात निष्कासन निकाल देना होता है। उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सामो का आवाप एवं उद्वाप केवल पौमान के ही गायत्री बृहति एवं अनुष्टुप मात्र तीन छंदों में होता है। इस अत्र ये वाव पंक्ति का परिसंख्या बोधित अर्थ हुआ गायत्री बृहत अनुष्टुप। एतत् त्रितयातिरिक्तेषु छंदसु पवमानातिरिक्त स्तोत्रेषु वान समावापः कार्य। सारांश यह कि आवाप पवमान के उक्त तीन छंदों के अतिरिक्त अन्य स्थल पर नहीं करना चाहिए। अत्र ये वाव पंक्ति पाठ प्राचीन पत्रियों एवं व्याख्याओं में मिलता है। चिन्न स्वामी ने अशुद्ध होने के कारण इस पाठ को अगाह्य माना है। जिस परिसंख्या विधि में एव आदि इतर व्यावर्तक शब्द साक्षात श्रुत नहीं होता अपितु लक्षणा द्वारा इतर व्यावर्तक शब्द की कल्पना की जाती है उसे लाक्षणिकी परिसंख्या कहते हैं। पंच पंच नखा भक्ष्या वाक्य में एव जैसे इतर व्यावर्तक पद का प्रयोग नहीं किया गया है अपितु कल्प है, इसलिए इस वाक्य को लाक्षणिकी परिसंख्या माना जाता है। इतर व्यावर्तक शब्द की कल्पना की जाने के कारण लाक्षणिकी परिसंख्या में तीन दोष होते हैं जिनका विवेचन अग्रिम विभाग में किया जाएगा। प्रसंग अब लाक्षणिकी परिसंख्या के तीन दोषों का निरूपण किया जा रहा है। परिसंख्याया दोषत्रयम् दोषत्रयम् च श्रुतहानिरश्रुत कल्पना प्राप्त बाधस्येति तदुक्तम् श्रुतार्थस्य परित्यागाद् श्रुतार्थ प्रकल्पनात् प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसंख्या त्रिदूषणा इति। श्रुतस्य पंच पंच नखभक्षणस्य हानात् अश्रुताया अपंच पंच नख भक्षण निवृत्तेह कल्पनात् प्राप्तस्य चापंच पंच नख भक्षणस्य बाधनादिति। अस्मिंश्च दोषत्रये दोषद्वयं शब्दनिष्ठं प्राप्त बाधस्त्वर्थनिष्ठः इति दिक् अर्थ। लाक्षणिकी परिसंख्या के तीन दोष ये हैं, एक श्रुतहानि, दो अश्रुत कल्पना और तीन प्राप्त बाध। कहा भी गया है परिसंख्या एक श्रुत अर्थ के परित्याग, दो अश्रुत अर्थ की कल्पना और तीन रागतः प्राप्त की बाधा इस प्रकार तीन दोषों से युक्त होती है। पंच पंच नखा भक्ष्या इस लाक्षणिकी परिसंख्या में उक्त तीन दोषों को इस प्रकार स्पष्टतः देखा जा सकता है। पंच पंच नखा भक्ष्याह का अर्थ अपंच पंच नख भक्षण का परित्याग रूप प्रथम दोष आपन्न हुआ। विधि में अपंच पंच नख भक्षण निवृत्ति को नहीं सुना जाता है, तथापि यहाँ विधि वाक्यों के अर्थ रूप में इसकी कल्पना की गई है। इस प्रकार उक्त कल्पना दूसरा दोष हुआ। पंच पंच नख जीवों एवं तदितर जीवों का भक्षण रागतः प्राप्त है, फिर भी इतर जीवों के भक्षण की निवृत्ति विधि द्वारा समझनी होती है। अतएव प्राप्त निवृत्ति अर्थात प्राप्त बाध यह तीसरा दोष हुआ। उक्त तीनों दोषों में से प्रथम दो दोष श्रवण संबद्ध होने से शब्दगत माने जाते हैं एवं तीसरा दोष रागतः प्राप्त की निवृत्ति होने के कारण अर्थनिष्ठ माना जाता है। साक्षात रूप से श्रवण संबद्ध न होने के कारण शब्दनिष्ठ नहीं माना जाता। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी दोष त्रयम् प्रदर्शयति दोष त्रयम् चेति तत्र श्रुतहानौ हेतुमाह श्रुतस्येति अश्रुत कल्पनायाम् हेतुमाह अश्रुतेति प्राप्तस्य बाधेपि हेतुमाह प्राप्तस्येति रागतः प्राप्तस्येत्यर्थः अस्य दोषत्रयस्य व्यवस्थया वृत्तित्वमाह अस्मिंश्चेति दोषत्रयम् मध्य इत्यर्थः। अर्थबोधनी लाक्षणिकी परिसंख्या में इतर व्यावर्तक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसमें तीन दोष ये हैं: श्रुतार्थ परित्याग, अश्रुतार्थ कल्पना एवं तीन प्राप्त बाध। जैसा कि पूर्व बताया जा चुका है, पंच पंच नखा भक्ष्याः वाक्य का अर्थ अपंच पंच नख भक्षण निवृत्ति समझा जाता है, किंतु वाक्य में पंच पंच नख भक्षण साक्षात श्रुत है और वाक्यार्थ होता है अपंच पंच नख भक्षण निवृत्ति। इस प्रकार यहाँ श्रुत अर्थ पंच पंच नख भक्षण का परित्याग किए जाने के कारण श्रुतार्थ परित्याग नामक दोष माना जाता है। वाक्य में अपंच पंच नख भक्षण निवृत्ति शब्दशः उपात्त नहीं है, फिर वाक्यार्थ में इसकी कल्पना किए जाने के कारण यहाँ श्रुतार्थ कल्पना नामक दोष माना जाता है। पंच पंच नख भक्षण एवं अपंच नख भक्षण पुरुष को रागतः प्राप्त होता है, किंतु प्राप्त भक्षणैक देश निवृत्ति इतर भक्षण निवृत्ति होने के कारण यहाँ प्राप्त बाध नामक दोष माना जाता है। अभिप्राय यह है कि सभी जीवों का भक्षण राग प्राप्त है, फिर कुछ के अतिरिक्त सभी पंचा पंच नख जीवों के भक्षण की निवृत्ति प्राप्त बाध दोष है। उक्त तीनों दोषों में से श्रुतार्थ परित्याग एवं अश्रुतार्थ कल्पना इन दोनों दोषों का संबंध शब्दात्मक वाक्य से है, अतएव ये दोनों दोष शब्द निष्ठ है। प्राप्त बाध दोष का संबंध रागतः प्राप्त होने के कारण वाक्य से संबंधित नहीं है, अपितु इसका संबंध अर्थ से है, अतएव इसे अर्थनिष्ठ कहते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त विवेचन द्वारा ग्रंथकार ने पाठकों को प्रकृति विषय के ज्ञान के संबंध में मार्गदर्शन किया है, जिसके आधार पर पाठक स्वप्रयास द्वारा ग्रंथार्थ को विस्तार से समझ सकते हैं। प्रसंग 61वें विभाग में ग्रंथकार मंत्र के रूप स्वरूप की व्याख्या कर रहे थे, उस विभाग से लेकर यहाँ तक आनुषंगिक विषय विधि त्रय का विवेचन हुआ। अब ग्रंथकार पुनः अपने मूल विषय मंत्र मीमांसा की ओर लौट आए। मंत्र विशेषाणाम उच्चारण सदृष्टार्थकत्वम येषां तु प्रयोग संवेतार्थ स्मारकत्वं न संभवति तदुच्चारणस्यान्य अन्यगत्या अदृष्टार्थकत्वं कल्प्यत इति नानर्थक्यमिति। अर्थ: जो मंत्र अनुष्ठान में उपयुज्यमान पदार्थों के स्मारक नहीं हो सकते हैं, अगत्या यह मान लिया जाता है कि उन मंत्रों का उच्चारण अदृष्ट को उत्पन्न करने के लिए होता है, इसलिए मंत्रोच्चारण व्यर्थ नहीं होता है। ननु कथम सर्वेषां मंत्राणां प्रयोग संवेतार्थ स्मारकत्वे नैवार्थत्वमुपपद्यते हुंफडादि मंत्राणां प्रयोग संवेतार्थ स्मारकत्वा संभवा द्वितीयाशंक्याः एषाम् इत्यादिना तदुच्चारणस्येति इति हुंफडादि मंत्रोच्चारणस्येत्यर्थ अनन्यगत्या दृष्टार्थत्वमिति पदच्छेदः इति नानर्थक्यमिति अतो हेतो हुफडादि मंत्राणाम नानर्थक्यमित्यर्थ। अर्थबोधिनी विभाग 16 में बताया जा चुका है कि अनुष्ठान में संवेद अर्थों का स्मरण कराना मंत्रों का प्रयोजन होता है। प्राप्त मंत्राक्षरों द्वारा वही अर्थ अभिहित होता है जिसका संबंध अनुष्ठान से होता है। किंतु कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो प्रयोग संवेद अर्थ का स्मरण करा सकने में समर्थ नहीं होते, जैसे कवचाय हुम, अस्त्राय फट आदि मंत्र। फिर क्या इन मंत्रों के उच्चारण का कुछ भी प्रयोजन नहीं है? अतएव क्या ये मंत्र प्रयोजनहीन व्यर्थ हैं? उत्तर है नहीं। जिन मंत्रों का अर्थ स्मरण रूप दृष्ट प्रयोजन नहीं प्राप्त होता है, उन कवचाय हुम आदि मंत्रों के उच्चारण से अदृष्ट उत्पन्न होता है, यह मानना चाहिए, क्योंकि ऐसे मंत्रों को अदृष्टार्थक मानने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार किसी भी मंत्र का उच्चारण किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं होता है। मंत्र प्रकरण समाप्त।